श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 4। अधिभूतम शरो भावा पुरुषश्चादि देवतम अधियज्ञो हमेवात्र देह देह व्रताम व्रतवर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। ओके, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये प्रश्न का उत्तर है। और प्रश्न यहाँ पूछा गया था, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, प्रश्न श्लोक नंबर 2 में पूछा गया है अधियज्ञ कथम कोत्र, और श्लोक क्रमांक 1 अधिभूतम च किम प्रोक्तम, उस प्रश्न का उत्तर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ भगवान क्लियर कर रहे हैं कि अधियज्ञ यानी सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। इंद्र आदि देवता उनके बिहाव पे यज्ञ को स्वीकार करते हैं, लेकिन अल्टीमेट भोक्ता जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमें ध्यान देना चाहिए कि यज्ञों की उत्पत्ति क्रियाओं से होती है। यज्ञ कर्म समुद्र भव, इस कारण से हमें समझना चाहिए कि क्योंकि यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और यज्ञों की उत्पत्ति कर्मों से होती है, अर्थात हमारे सारे कर्मों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। यानी कि हमारे कर्मों से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता होनी चाहिए, ये हमारी सही स्थिति है। तात्पर्य, हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि भौतिक प्रकृति लगातार परिवर्तनशील है। इसके द्वारा हम अपने आप को अपने मन बुद्धि अहंकार से अलग देखने का प्रयास कर सकेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमारा मन बुद्धि अहंकार और हमारा शरीर जो कि पंच महाभूत से बना है वो लगातार परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा के रूप में मैं बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर रहा हूं। तो वहां से व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है और ऑब्जर्वेशन के द्वारा कि मैं इस शरीर से पृथक हूं और मैं इस जगत की अभिव्यक्ति से भी पृथक हूं। तात्पर्य, यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीर की 6 अवस्थाओं से शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। ये बात व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए कि प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है, और इससे विपरीत एक ऐसी प्रकृति है जो भगवान का दिव्य धाम है जहां इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होते, और वही हमारा सच्चा गंतव्य स्थान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस जगत के परिवर्तनों से अचंभित होने के बजाय, विस्मित होने के बजाय, अपने चित्त को आध्यात्मिक प्रगति की तरफ मोड़ने का प्रयास करता है, और इसी के द्वारा वो भगवान का स्मरण कर पाएगा मृत्यु के समय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जगत की क्षणभंगुरता को देखते हुए, परिवर्तनशीलता को देखते हुए व्यक्ति को हृदय में वैराग्य को धारण करना चाहिए कि कोई भी वस्तु मैं जिसका आश्रय ले रहा हूं जगत में, उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा और इस कारण से वो मुझे शाश्वत शांति नहीं दे सकती है, सिवाय भगवान श्री कृष्ण के जो कि हमेशा रहते हैं। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं अधिदैवत कहलाती है। इसको आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और उनके नीचे बहुत सारी व्यवस्था है, उसी प्रकार से ये जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये भी देवताओं के द्वारा जो एक सरकार है जिसकी व्यवस्था भगवान करते हैं, उनके द्वारा ही मैनेज किया जा रहा है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यानी परमात्मा के बारे में बात हो रही है, परमात्मा भगवान के अंश हैं, स्वांश हैं। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एवा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बार बार अगर आप लोगों को बोलोगे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कुछ लोग सुने रहते हैं और बोलते हैं कि परमात्मा का ध्यान करो, परमपिता का ध्यान करो, परमेश्वर का ध्यान करो, लेकिन वे ये समझते नहीं है कि ये परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जैसे कि हम यहाँ भगवद गीता में स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं। अधियज्ञो हमें वात्र एव, यानी निश्चय ही अहम, भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि मैं ही अधियज्ञ के रूप में सबके शरीर में रहता हूं, मैं ही मतलब और कोई नहीं। तो ये बड़ा स्पष्ट है, उसके बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि परम पिता परमात्मा कौन है, ये भी आश्चर्य की बात है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी होगी यहां पे कि न सिर्फ भगवान कार्यकलापों के साक्षी हैं, बल्कि हमारी चेतना के स्वरूप भी हैं, शुद्ध चेतना के भी और अशुद्ध चेतना के भी। और इस बात को भगवान आगे गीता में बताते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान की ही शक्ति से, भगवान की ही इच्छा से हम लोग मोहित होते हैं और भगवान की ही कृपा से हम लोग भगवान को जान पाएंगे, अपनी शक्ति से नहीं। अद्भुत बात यह है कि अगर भगवान ना चाहें तो हम उनको भूल भी नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान को विस्मृत करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं, मिथ्यांकार इत्यादि की व्यवस्था करते हैं जिसके द्वारा हम भगवान को भूल सकें। अन्यथा जीवात्मा के लिए असंभव है भगवान श्री कृष्ण को भूलना, इतने प्रिय हैं भगवान एक्चुअली जीवात्मा को। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे एक माता अपनी छोटी बेटी को खेलने के लिए कहीं भेज अलाउ करती कि वो खेल रही है, खेल रही, खेल रही, लेकिन वो हमेशा संरक्षण में रखती है कि बच्चा कुछ बहुत बड़ा बच्चा बहुत बड़ा उत्पात ना कर दे। भगवान जीवात्माओं को जो भौतिक भोग करना चाहते हैं उनको इस जगत में भेजते हैं और स्वतंत्रता भी देते हैं कि जितनी भोग करना चाहते हो कर लो, लेकिन उनके हृदय से चाहते नहीं हैं। और उसका कारण है कि भगवान ये देखना चाहते हैं शायद कभी तो ये मेरी तरफ मुड़ने की इच्छा करेगा। और जैसे ही जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़ने की इच्छा करता है, भगवान तुरंत उसको नोट कर लेते हैं और अधिकाधिक उसे अपने पास आने का मौका देते हैं। जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं वो अनुभव करेंगे कि भक्ति को बहुत अच्छे से ना करने के बावजूद भी भगवान भक्ति से जाने नहीं देते हैं और बार बार भक्ति करने का मौका और भक्तों का संग हमको देते रहते हैं। तो इससे भगवान की किस लिबरल एटीट्यूड के प्रति थोड़ा सा अंदाज़ा हमको लगेगा कि एक्चुअली भगवान की हम जो भी सेवा करते हैं भगवान उसे कभी नहीं भूलते और हमको और अधिक अधिक सेवा करने का मौका देते हैं। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य इस उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। क्यों मालूम चल जाते हैं? क्योंकि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है। भगवान के बारे में यदि कुछ भी जानना चाहता है व्यक्ति, तो उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब वो भगवान को समझ पाएगा। केवल बुद्धि के विश्लेषण के द्वारा वो भगवान को नहीं समझ सकता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत अधः। भगवान को अपनी भौतिक इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते, लेकिन जब जीव को भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में और भगवान का नाम जप करने में लगाते हैं तो हम समझ पाते हैं भगवान को। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन निव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। इस संबंध में एक भक्त बता रहे थे कि एक माता जी उनको बोली आकर के कि मुझे 11वां अध्याय बहुत अच्छा लगता है, जिसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया है। तो क्योंकि लोग भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इस कारण से उनको विराट रूप पे ध्यान करने के लिए बोला जाता है, जो वस्तुतः भौतिक ही होता है, लेकिन क्योंकि उनकी धारणा इससे परे नहीं होती है, इस कारण से विराट रूप पे ध्यान करते हैं। और इस चीज को श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में भी बताया गया है, लेकिन भगवान की कृपा से धीरे धीरे उस प्रकार से वो शुद्ध हो जाते हैं और फिर एक दिन भगवान के सच स्पिरिचुअल फॉर्म के ऊपर भी वो ध्यान करने के योग्य बनते हैं। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे इस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और उनका सर उच्चलोक है। तो ये समझ में आना चाहिए कि भगवान से ये जगत आया है, लेकिन भगवान से ये भिन्न भी है। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे एक गाय है तो गाय से एक ही समय में दूध भी आता है, कोई ग्वाला दूध निकाल रहा होता है तो गाय से दूध भी आता है और मूत्र भी आता है और हो सके तो गोबर भी आता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे भाई सब कुछ तो गाय से आ रहा है तो ठीक है फिर मैं दूध की जगह गोमूत्र पीऊंगा, या जैसे दूध से अनेक अनेक पकवान बनाते हैं तो मैं गोबर से भी पकवान बनाऊंगा। तो ये सत्य है कि सभी कुछ भगवान से आया है, आध्यात्मिक और भौतिक प्रकृति, फिर भी हमें समझ में आना चाहिए कि भौतिक प्रकृति भगवान से भिन्न है। जैसे कि यहां बताया गया है, भौतिक प्रकृति परिवर्तनशील है और वो जड़ है, और इस बात को भगवान ने सातवें अध्याय में भी भिन्ना प्रकृति के रूप में करके बताया था। लेकिन आत्मा भगवान की ही गुणवत्ता वाली है। हम सब लोग सच्चिदानंद हैं और भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन हाँ हम लोग अणु हैं और भगवान विभू हैं। तो इसलिए ये सोचना कि अगर सब कुछ भगवान से आया तो सब कुछ भगवान है, ये गलत है। भगवान की शक्ति है लेकिन भगवान नहीं है। भगवान का जो असली स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, लेकिन क्योंकि अगर भगवान की धारणा हम नहीं कर सकते हैं, आध्यात्मिक धारणा, तो ऐसे लोगों को फिर भगवान के विराट रूप की कल्पना की धारणा दी जाती है, जो कि प्रायः काल्पनिक बोला जाता है। काल्पनिक अर्थ है इसमें इस प्रकार से ध्यान करते हैं कि भगवान का जो सर है वो जो ऊपर के लोक हैं, भगवान के चरण जो है वो नीचे के लोक हैं, इस प्रकार से। लेकिन फिर ध्यान देना चाहिए कि भगवान का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, लेकिन इस प्रकार का ध्यान करने से धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध होता है और फिर भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की धारणा करने में वो सक्षम हो पाता है। अब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे किस प्रकार से अंत समय में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।